एक रामलीला मंडली में हनुमान का पात्र करने वाला व्यक्ति बीमार पड़ गया। नए हनुमान की खोज चालू हुई। उसी गांव में एक बलशाली बलिष्ठ तगड़ा व्यक्ति था जिसके पास कोई काम नहीं था। ऐसे व्यक्ति को एम्प्लॉय कर लिया गया, उसको ले लिया गया। और पहला ही जो नाटक हुआ हनुमान, उसका परफॉर्मेंस इतना बेस्ट था कि उस व्यक्ति का भी अपना आत्मविश्वास बढ़ गया कि मैं इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ। फिर तो क्या, जहाँ जहाँ राम मंडली गई हर जगह वही हनुमान, जय श्री राम। और वो व्यक्ति लगभग एक वर्ष उसी रामलीला मंडली में हनुमान का पात्र करता रहा और उन्हीं के साथ रहा। जब वो घर आया एक साल के बाद, अब तक दौरे पर ही था, तो उसने कहा मैं हनुमान हूँ। पत्नी ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा किया। दूसरा दिन, तीसरा दिन, उसने ड्रेस भी वही पहन के रखी थी हनुमान की, और उसके पास में गधा भी था। मित्रों से उसने कहा कि मैं हनुमान हूँ। हाँ, सबने कहा बहुत अच्छा किया तुमने। उसने कहा अच्छा नहीं, मैं हनुमान हूँ। मजाक भी कुछ दिन ठीक लगता है, बाद में भारी पड़ने लगता है। चौथा दिन, पांचवा दिन, वो हनुमान के कपड़े निकालने को तैयार नहीं है। सबने समझाया, पत्नी ने समझाया, बच्चों ने समझाया, पापा ये क्या है? उसने कहा पापा मत कहो, मैं हनुमान हूँ। फिर तो ऐसा हो गया कि दिन रात वो उसी भाव में रहता है। जिस तरह हनुमान चलता है उसी तरह वो चलता है, जिस तरह हनुमान सोता है, जिस तरह हनुमान बोलता है, बस वैसे ही वो सब कुछ कर रहा है। किसी के समझाने का उस पर कोई प्रभाव नहीं। आखिर क्या करे, ये क्या हो गया, इसका तो दिमाग खराब हो गया, उसका इलाज करना चाहिए। इलाज कराया पर कोई फायदा नहीं हुआ, कोई दवाई कारगर नहीं सिद्ध। आखिरकार किसी ने सुझाया कि इसको मनोचिकित्सक के पास ले जाओ। मनोचिकित्सक को भी उसने समझाया कि मैं ही हनुमान हूं। उसको तरह तरह से सेशंस हुए पर वो मानने को तैयार ही नहीं। आखिरकार किसी ने सजेस्ट किया लाय डिटेक्टर टेस्ट। एक मशीन होती है लाय डिटेक्टर मशीन, जिसमें व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता है या मशीन पे बिठाया जाता है, हृदय की गति को मापा जाता है, उसको भिन्न भिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि तुमने चोरी की है, अगर उसने की हुई तो उसके हृदय की धड़कन में थोड़ा सा बदलाव होगा जो मशीन डिटेक्ट कर लेगी, तो आप झूठ बोल ही नहीं सकते इसमें। ये क्राइम पुलिस क्राइम बेंच में ब्रांच में इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। अगर आपने कोई भी पाप किया है, गलती की है, गुनाह किया है, तो भिन्न भिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं, तब तक सामान्य चलती है हृदय की गति, और फिर अचानक से पूछा जाता है क्या तुमने ये किया, उस समय व्यक्ति थोड़ा सा ठिठक जाता है, सोचता है और फिर गलत उत्तर देता है, तो मशीन डिटेक्ट कर लेती है कि ये गलत है, ये झूठ है। इससे भी पूछा गया, ये तुम्हारी पत्नी है? उसने कहा हाँ। ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ। ये तुम्हारा घर है? हाँ। इधर उधर के प्रश्न पूछे और अचानक से पूछा गया क्या तुम हनुमान हो? उसने सोचा पहले ही लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है, और उसने कहा नहीं, और उसके हृदय की गति सामान्य रही। मनोचिकित्सक और मशीन के अनुसार व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि यह हनुमान नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, इसका मतलब यही हनुमान है। मशीन को भी धोखा दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्या किया एक साल? एक्टिंग की। क्या समान था एक साल? मैं हनुमान हूं, मैं ही हनुमान हूं, और ये समान, ये भाव, ये संकल्प, ये विचार, ये भावना इतनी गहराई में चली गई, अवचेतन में इतनी घुस गई कि बेचारी लाय डिटेक्टर टेस्ट भी फेल हो गई उसके सामने। ये बड़ी पावरफुल मशीन है, इसको धोखा देना बहुत मुश्किल है। आपने कोई गीत लिखा, वो गीत आपका है नहीं, किसी का चुराया हुआ है, और आपसे इधर उधर के प्रश्न पूछे गए और अचानक से पूछा गया क्या ये गीत तुमने लिखा, एक मिनट के लिए ठिटक जाएगा व्यक्ति और कहेगा हाँ मैंने ही लिखा है, मतलब झूठ, तुमने नहीं लिखा है। ऐसी ये मशीन है, मनुष्यों ने भी बहुत सारी चीजें ईजाद कर रखी है झूठ को पकड़ने की। तो ऐसा क्यों हुआ? हम भी जो अभिन्न भिन्न भाव दशाओं में है, मैं उदास हूं, मैं दुखी हूं, ये भी मैं हनुमान हूं जैसा ही है, या फिर लोग बहुत हमें सम्मान देते हैं, समझते हैं बहुत बड़ा ज्ञानी और बहुत बड़ा योगी है, नमस्कार करते, हम भी उनकी बातों में आ जाते और ये मान लेते कि हाँ मैं बड़ा व्यक्ति हूं, मुझे नमस्कार सबने करना चाहिए। नहीं करता है कोई, उसकी गलती है। तो ये क्या हो गया? स्वभाव जैसे नेचुरल हो गया, नेचर हो गया। कल की सारी मुरली किस पर थी? नेचुरल नेचर पर। मुरली है 2008 की, ढेर सारी बातें उसमें बाबा ने बताई है। ये चीजें तुम्हारी क्या हो जाए? सहज स्वाभाविक हो जाए। क्योंकि जो चीज सहज हो गई, स्वाभाविक हो गई, वही लंबे समय तक चल सकती है। खिंच खिंच के, जबरदस्ती, नहीं चल सकती। किसी को बाहर के किसी व्यक्ति को पकड़ के लाओ और उसको कहो रोज तुमको अब 10 दिन तक 4 बजे उठना है, नहीं तो तुमको सजा मिलेगी। बेचारा करेगा जबरदस्ती, दुखी हो के, पर बाद में ऐसा छूटेगा जैसे कोई कोई मरीज होते हैं ना अस्पताल में भर्ती होते, इतने परेशान हो जाते, इतने परेशान हो जाते हैं, ये लाइन वो लाइन, इधर ये इधर वो, कैसे वैसे रहते हैं 3-4 दिन, बाद में ऐसा भागते ऐसा भागते कि कभी आते ही नहीं, कभी दिखते ही नहीं कभी क्योंकि जबरदस्ती हो गया था। जहां जबरदस्ती है, जहां फोर्स है, वहां लंबा समय नहीं चल सकती कोई भी चीज। इसीलिए जो भी पुरुषार्थ हम करें वो क्या हो जाए, सहज हो जाए। कल की व्यक्तवाणी, बाबा ने कहा उस नई दुनिया में जाना है तो नए संस्कार धारण करने पड़ेंगे। नई दुनिया के लिए क्या चाहिए, न्यू हैबिट्स फॉर द न्यू वर्ल्ड। पुरानी आदतें लेकर उस दुनिया में नहीं जा सकते तुम। तो ऐसी कितनी 14 बातें थी कल, जो क्या करनी है हमें, सहज स्वाभाविक। ये राजयोग नहीं है, ये सहज राजयोग है। राजयोग और सहज राजयोग में क्या अंतर है? राजयोग और सहज राजयोग में क्या अंतर है? एक है सहज राजयोग, सहज सहज समाधि भले, जो कुछ हो वो सहज हो, स्वतः हो, नेचुरल हो, ऑटोमेटिक हो, स्पॉन्टेनियस हो, स्वस्फूर्णा से हो, हम कुछ भी नहीं कर रहे, अपने आप कर रहे। और ये तब होगा जब कोई चीज सबकॉन्शियस में चली जाए, अवचेतन मन में चली जाए, अवचेतन मन का एक हिस्सा बन जाए, जब कोई चीज हमारी सबसे गहरे से गहरी आदत बन जाए, ऐसी आदत कि जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वैसे की वैसी रहती है, ऐसी आदत जो स्थान बदलने के बाद नहीं बदलती, ऐसी आदत जो समय बदलने के बाद नहीं बदलती, ऐसी आदत जो व्यक्ति अलग अलग बदलते हैं तब भी नहीं बदलती, वो आदत अपनी जगह खड़ी रहती है। अच्छा लडोल, मैं हनुमान हूं, चाहे कुछ भी कर लो, किसी भी तरह से समझा लो, तो मुझे समझा नहीं पाओगे, मैं ही हूं। जब सवाल ही नहीं है कोई दूसरा, एक पागल खाने में कई सारे लोग थे और उसमें से एक व्यक्ति को पकड़ा गया, उसको ये नशा चढ़ गया कि मैं ही मोहम्मद पैगंबर हूं, कोई सवाल ही नहीं दूसरे का, मैं अंतिम हूं, अंतिम पैगंबर भगवान का, मेरे बाद कोई नहीं, मैं ही हूं, मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं ही अंतिम पैगंबर हूं। तो आखिर उसे भर्ती करना पड़ा, और जिस सेल में उसे भर्ती कर गया उधर एक दूसरा व्यक्ति भी था, उसने उसको कहा कि तुम कैसे आ गए, उसने कहा मैं कैसे आ गया, मैं तो स्वयं पैगंबर हूँ, मोहम्मद पैगंबर मैं ही हूँ, स्वयं अल्लाह ने मुझे भेजा है। इसलिए वो उसको पूछता तुम यहाँ कैसे आ गए, बोलते तुम, मैं तो खुद अल्लाह हूँ, मैंने तुम्हें भेजा ही नहीं इसके लिए तुम हो कैसे सकते हो, क्योंकि अल्लाह तो मैं हूँ, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये क्या है, ये कंडीशनिंग है, इसको कहते हैं कंडीशनिंग ऑफ द माइंड। ये कैसे होती है, क्या करे, जिससे जैसे ये नेगेटिव कंडीशनिंग हो गई है, भ्रमपूर्वक कंडीशनिंग हो गई है, उसी तरह पॉजिटिव कंडीशनिंग भी हो सकती है, उसी तरह वो भी हो सकता है जो सत्य है, पर हम सत्य से दूर है, और जो भगवान है उसे पता है कि यही सत्य है। जैसे एक चोर यहां बैठा है, एक पतली सी दीवार है यहां पर, उसे इधर का नहीं दिखता है, और किसी ने कहा इस दीवार के भीतर इधर खजाना है, तो ये दिन रात सोचते रहता है इस खजाने तक कैसे पहुंचूं। अगर देखा जाए तो इसने इस खजाने को देखा नहीं है, पर इसे ये बताया गया है, उसने बताया जिसने खजाना देखा है कि यहां खजाना है, और वो यहां से युक्ति कर रहा है कि कैसे कर। दूसरा मित्र कहता है तुमको कैसे पता खजाना है, खजाना है ही नहीं उधर। पर अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, एक तो ये भी राइट है कि इसने देखा नहीं है तो कैसे है, इट इज रॉन्ग कि ये नहीं है यहाँ, परंतु एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसने ये दोनों को देखा है, वो कहता है खजाना है, और ये जो कहने वाला ये परम सत्य है, इसलिए हमें पता नहीं वो परमधाम है या सूक्ष्म वतन है या दुनिया है या जो 84 जन्म हमने लिए, हमें तो कुछ भी याद नहीं है। पर जो हमसे कह रहा है कि यही सत्य है, ऐसी दुनिया थी और तुम्हारे ये संस्कार थे, इसलिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। नहीं, बताने वाले तो बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी हमें विश्वास है। फिर भी रात भर ये चोर प्लानिंग करता है कैसे इस दीवार को तोड़ूं और इधर जाऊं। ये भी हो सकता है कि दीवार को तोड़े और कुछ भी ना मिले, पर इसे पूर्ण विश्वास है कि जिसने मुझे बताया वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। जिसने हमें बताया वो ट्रूथ है, भले हम में से कोई नहीं जानता है, परमात्मा परम सत्य है, उसने बताया है। तो नए संस्कारों के लिए क्या चाहिए? सबसे पहला, अगर तीन बातें कहें तो सबसे पहला तो रेपिटेशन, दोहराओ। जो नई आदत बनानी है उसको क्या करना है? दोहराते रहना है, दोहराते रहना है बार बार। वो जो ऊपर है ना ओम शांति भवन में, ऊपर फोटो, बाबा कहते फोटो के सामने जाकर बैठे, देखो ये मैं बन रहा हूँ कृष्ण। कल कहा ना कृष्ण के साथ आओगे, फर्स्ट रिपीटेशन, दोहराओ बार 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 रिपीट करना। दूसरा अफर्मेशन, आत्म सुझाव, ऐसे वाक्य क्रिएट करना और उनको रिपीट करते रहना अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियों में। जैसे स्वास्थ्य का ही ले लो, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, किसी प्रकार की कोई बीमारी है, हर दिन मेरा स्वास्थ्य सुधर रहा है, हर दिन मेरी एनर्जी लेवल बढ़ रही है, बीमारियों से मैं बहुत दूर हूँ, कोई थकान नहीं, कोई बीमारी नहीं, सब कुछ मेरा ठीक हो रहा है। ये क्या है? अफर्मेशन। तीसरा है विजुअलाइजेशन, उसको देखना है, उसमें रंग भरने हैं, चित्र बनाने, उसको लाइव बना देना। यस यही मैं हूँ, ये हनुमान कैसे चल रहा है, ये मैं हूँ। ड्रेस भी पहन लिए, ड्रेस उतारने को तैयार नहीं, पूछ गदा लेकर ही घूम रहा है, लोग परेशान हैं। विजुअलाइजेशन। नए संस्कार बनाने के लिए क्या चाहिए? दोहराओ, आत्म सुझाओ और चित्रीकरण, देखना, उसको चित्र बना देना, उसमें रंग भर देना। निखिलेश भाई, चित्रों में कलराइजेशन, पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन, तीन शब्द है। लाइव देखना उसको कि ये ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? कल की मुरली पर आते हैं, पहली बात रूहानी नशा और गीत, निरंतर गाते रहो, इसी को अपना संस्कार। तुमको अगर उस दुनिया में जाना है तो ये नशा यहाँ चाहिए, ये गीत यहाँ गाते रहो। कौन सा गीत गाओगे? बाबा बाबा, हमारे कितने गीत है, बाबा का एक ही गीत है बस। बाबा का गीत क्या है? वाह बच्चे वाह, उसके दूसरे गीत ही नहीं है, हमारे ढेर सारे गीत है। तो नशा किस बात का? तख्त का और ताज का, इधर ये तख्त, फिर वो तख्त और फिर वो तख्त। तो दोहराते रहना तो नशा चढ़ेगा। नशा के लिए क्या चाहिए? डोज ज्यादा चाहिए, हमारा डोज कम पड़ रहा है इसलिए नशा नहीं है। डोज बढ़ाओ, डोज बढ़ाओ और कई बार लो। एक बार सुबह ले लिया उससे क्या होता है? ये भी कोई पियक्कड़ की निशानी है कि एक बार ले लिया और संतुष्ट? जब सब कदम ना लड़खड़ाए, लोग ना कहे, कोई पकड़ के घर ना पहुंचा दे, तब कहेंगे नशा। बाकी कोई नशा है ये? थोड़ा सा पी लिया इतना सा और सोच रहे हम, ये तो जो बिल्कुल कच्चे खिलाड़ी है ना उनकी बात है, जो पक्के खिलाड़ी है वो ऐसे नहीं होते। नाम खराब कर रहे पियक्कड़ों का, कम कम पी के। तो डोज बढ़ाना है, नशा बढ़ाना है। तो इस नशे को, इस गीत को क्या करना है? ऑटोमेटिक बजता रहे, हम सो रहे तो भी ये गीत बजता रहे, अपने आप ही बजता रहे निरंतर। इस हद तक उसको ले जाना है सबसे पहली बात। दूसरा, राज्य। कौन सा राज्य है उधर? एक। यहां पर भी एक ही राज्य हो। दुविधा वाली जो मनस्थिति है, ये करूं कि वो करूं, यहां जाऊं कि वहां जाऊं, टू बी और नॉट टू बी, शेक्सपियर के हेमलेट जैसी सिचुएशन, हमेशा दो मन दुविधा में है, ये या वो, ये या वो, ये करूं या वो करूं, वो करूं या वो करूं। कुछ भी एक ले लो और फिर दूसरा भूल जाओ कि दूसरा भी था। अब जो होगा वो होगा, भगवान साथ है, देख लेंगे। और हमेशा वो रास्ता लो जिसमें कम भीड़ है। तीव्र पुरुषार्थ के रास्ते में भीड़ कम है, साधारण पुरुषार्थ के रास्ते में तो बहुत भीड़ है, भीड़ कम। टू वेज डाइवर्ज्ड इन द वुड्स एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। अंग्रेजी कवि लिखता है कि दो रास्ते थे, एक में बहुत भीड़ थी, एक में बहुत कम भीड़ थी, मैंने जो कम भीड़ वाला रास्ता है वो ले लिया और बस उसी ने सारा फर्क कर दिया है, जिसमें बहुत कम लोग जा रहे हैं, अधिकतर तो दौड़ रहे दूसरे रास्ते से। तो हमारा राज्य कौन सा है? एक ही राज्य, एक ही राज्य अर्थात एक ही संकल्प है, एक ही भाव है, एक ही मन में विचार है, और कोई राज्य नहीं है, बस उसका उसकी मुरली है, उसकी बातें है। इस ज्ञान को छोड़कर बाकी सब बातें क्या करने वाली है? सत्यानाश करने वाली बातें है। एक ही राज्य अपने अंदर लाना है, तीसरा एक धर्म लाना है। बच्चे क्या कहते हैं बाबा से? कभी कभी मनसा में वाचा में अंश रह जाता है पवित्रता का, अपवित्रता। एक धर्म अर्थात संपूर्ण प्यूरिटी, एक धर्म, यह है धर्म। धर्म की क्या परिभाषा है? जो धारण की जाए, धारण किया जाए वो धर्म। धर्म की और एक परिभाषा भी है, यह तो शास्त्रों में दी हुई परिभाषा है या शब्दों की व्युत्पत्ति से निर्मित परिभाषा है। धर्म अर्थात जो धारण किया जाए, धर्म की और एक सूक्ष्म और परिभाषा है, धर्म अर्थात टू बी अलोन, अकेले हो जाना। धर्म अर्थात सारे बंधन गिर जाना। धर्म अर्थात कोई भी अंधकार नहीं। धर्म अर्थात ऐसी स्थिति में आ जाना जहां कोई आधार नहीं है, निराधार हो जाना, कोई अंधकार नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई सूक्ष्म लगाव नहीं है, वो धर्म की मुख्य परिभाषा है। ऐसी स्थिति में ऐसी निस्तरंग झील बन जाना जिसमें कोई हलचल नहीं है, वो है धर्म। तो धर्म कौन सा? संपूर्ण पवित्रता का। उसके बाद में नई दुनिया में जाने के लिए क्या चाहिए? जो वहां है वो यहां धारण करना पड़ेगा, जो वहां है वो यहां ही धारण करना है। यहां ही एक राज्य हो जाए, यहां ही एक धर्म हो जाए, यहां ही रूहानी नशा हो जाए, वो सब कुछ यहां होना चाहिए, तो वहां पे ट्रांसफर होगा। अगला क्या कहा? अगला नेचुरल नेचर यहां कौन सी बनानी है जिस पे काम करना है, जो रिपीट करते जाना है, विजुलाइज करते जाना है, देखते जाना है, ऐसा क्या? चलो वो ले लेते, एक है भाव, एक है भावना। कौन सा भाव? आत्मिक भाव। कौन सी भावना? शुभ। चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, कोई हमारी रोज ग्लानी करता है, रोज अपमान करता है, रोज निंदा करता है, उसमें क्या किया जाए? क्या किया जाए? ये तो थियरी है किया क्या जाए जैसे एक बार बताया था ना, एक व्यक्ति रोज लिफ्ट से जाता है और जैसे ही पांचवी मंजिल पे पहुंचता है, लिफ्ट में एक दूसरा व्यक्ति आता है पांचवी मंजिल में उसके साथ, और दोनों ऊपर चढ़ते, लिफ्ट मैन है वो, दो व्यक्ति है, जो नया आता है वो इस व्यक्ति के मुंह पे थूक देता है रोज, और जो व्यक्ति जिस पर थूका जाता है वो अपना रुमाल निकाल के चुपचाप पोंछ देता है, और जब बारहवीं मंजिल आती है तो वो निकल जाता है। ये रोज हो रहा है, वो लिफ्ट मैन से रहा नहीं जाता, ये हो क्या रहा है ये पांचवीं मंजिल से आदमी आ जाता है, इस पर थूकता है, ये कुछ भी नहीं बोलता है। वो उस व्यक्ति से पूछता है जिस पर थूका गया कि आप कुछ भी नहीं बोलते, ये क्या है? मतलब वो सामने से आता है, थूकता है, ऐसा वो क्यों करता है? ये व्यक्ति कहता है ये उसकी समस्या है, उससे पूछो, मुझे क्या लेने देना है, ये उसका हिसाब है। प्लानिंग उसको करनी पड़ती है कि जब मैं दिखूं, जब मैं आऊं, प्लानिंग मुझे थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, ये उसकी समस्या है, उसको पूछो। कितना साक्षी भाव है, डिटैच्ड। मानो तो रियल, मानो तो अनरियल। संत ज्ञानेश्वर के जीवन में दिखाया है बचपन से लेके एक व्यक्ति ऐसा था जो उसकी हमेशा निंदा करता था, लास्ट तक, लास्ट में जाके कहीं आके उसने माफी मांगी, लास्ट में एकदम जब उसको ढेर सारी शरीर बीमार पड़ गया फिर माफी मांगी। पर तब संत ज्ञानेश्वर ने कहा माफी कैसी, मुझे तो पता ही नहीं। उन्होंने कभी उसके गालियों को अंदर लिया ही नहीं। वो भिक्षा मांगने जाते थे तो उस पर गालियां देते थे, सन्यासी का पुत्र है, सन्यासी का पुत्र। लोग भिक्षा नहीं देते थे, उसकी वो झोली फाड़ दी, पैरों के नीचे कुचल दी, ऐसा वो व्यक्ति। उसकी माँ को वो पूछता है ऐसा हमारे साथ लोग क्यों करते। उसकी माँ बहुत अच्छा आंसर देती है, मराठी में है, समाधाने दुख सहन करने ही सुद्धा तपश्चर्या सा है। समाधान से दुख सहन करना ये भी एक तपस्या ही है। तो क्या कौन सा भाव हो शुभ, इसमें दो तीन चीजें। सबसे पहली चीज, जो व्यक्ति विरोध में खड़ा है पहले तो उससे माफी मांग लो, एक सूक्ष्म में, सूक्ष्म अभ्यास। क्यों? क्योंकि किसी जन्म में हमने भी उसकी निंदा की है, ऐसे ही थोड़ी ना कोई निंदा करता है, इसलिए एक माफी तो बनती है उसकी मांगनी, माफी मांगना ही पड़ेगा। मराठी संत लिखता है कृष्ण निंदा घड़ली मनुन महार जन्म प्राप्ति। किसी जन्म में शायद कृष्ण निंदा हुई थी इसलिए इस जन्म में छोटी जाति का जन्म हुआ, इसलिए ये लोग जाने नहीं देते मंदिर में, मंदिर में मुझे एंट्री नहीं है क्योंकि छोटी जाति का है। उम्भरट्याशी कैसे शिव आम ही जाति हीनम, रूप तुझे कैसे पाऊ त्यात आम ही दीनम। तेरे रूप को कैसे देखूं मैं, हम दीन है। ये लोग पुजारी लोग अंदर नहीं जाने देते, पर ये कर क्यों रहे ऐसा, क्योंकि शायद मैंने ही तुम्हारी निंदा की थी, कृष्ण निंदा घड़ली म्हणून महार जन्म प्राप्ति, इसीलिए तो ये हो रहा है। ऐसे थोड़ी ना होता है ड्रामा में, कुछ बनाने वाला ने एक एक पार्ट, एक एक सीन को बड़ा कितनी बार रिपीट 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 करके सीन शूट किया गया है। हाँ ये परफेक्ट है, अब ये ठीक है, पहले शूट किया उसने थोड़ी सी निंदा की है, ये ठीक नहीं, अच्छी करो जरा, फिर सेकंड, फिर थोड़ी पावरफुल, ये भी ठीक नहीं, अच्छी करो थोड़ा सबके सामने, हाँ ये बेस्ट है, फाइनल करो इसको, फिर मूवी बनी है। एक तो माफी, दूसरा जो विरोध कर रहा है उसके प्रति शुभ भावना, अर्थात एक तो माफी मांग ली, दूसरा उसके अंदर कुछ तो खालीपन है इसलिए तो ये कर रहा है, उस खालीपन को भरना है। प्रभु प्रेम की किरणें दो उसको, शक्तियों की किरणें दो, ये कमजोर आत्मा है, जलन की होती है, निंदा परिणाम है आंतरिक जलन का, ईर्ष्या का, इसलिए वहां क्या करो उसको किरणें दो, कुछ भर दो उसमें, शक्ति या पावर दे दो उसको, तो ही होगा ये ठीक। तीसरा क्या करेंगे, उसे धन्यवाद। क्यों धन्यवाद, अंतिम समय है, भूसाब चुक तो हो रहा है ना उसके द्वारा, इसलिए जो भी बचे कुचे होंगे जल्दी जल्दी आ जाओ, ग्लानी करो, निंदा करो, अपमान करो, जो करना है कर दो, क्योंकि हमें जल्दी है। आई एम गेटिंग लेट, आई एम लेट, आई एम लेट। एलिस इन वंडरलैंड का वो रैबिट है ना, उसको लेट हो रहा है, आई एम लेट, आई एम लेट, आई एम लेट, वो भाग रहा है। इसलिए जिसको जिसको जो कुछ करना है कर दो, टाइम पे बाद में मत आना, फिर अभी आ जाओ, आज के दिन ही सारे तीन चार लोग आ जाए और कुछ कुछ करना है कर देना, तो थोड़ा हल्का बन हो जाएगा ना, क्योंकि हिसाब चुक तो हो गया। और नई नई आत्माएं हैं, पता नहीं किस किस के साथ क्या क्या कर रखा है इतने जन्मों में, आह्वान तो नहीं करो, जो जिसको आना है आ जाओ फटाफट कर दो। तो ये दो तीन काम करने, तो कौन सा भाव, इसकी आदत डालनी है अमृत वेला भाव, ये काम है, ये इंपॉर्टेंट काम है जो करना पड़ेगा। और है दूसरा क्या बताएं, भाव भावना, भाव कौन सा, आत्मिक, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये दो चीज। उसके बाद में मैं और मेरा, एक है मैं एक है मेरा, जब भी मैं कहो तो समान। पर ये बहुत सूक्ष्म और बड़ा डिफिकल्ट अभ्यास है, इतना जल्दी याद नहीं आता है, क्योंकि हमारा झूठा मैं है, मैं ये हूँ, मैं हूँ, मैं ये नाम हूँ। हम जब जन्म लिए हमारा कोई नाम था क्या, ये नाम थोपे गए ऊपर से, डाले गए, तुम वो, तुम वो, तुम ये, और उस नाम के साथ हमारी आइडेंटिटी कितनी पक्की हो गई है कि जैसे मैं ही वो हूँ। 10 लोग सोए हुए और हमारे नाम से कोई पुकारे, सुखदेव भाई, सुखदेव भाई, तो ये दूसरा जो है वो कभी नहीं उठेगा, वही उठेगा। क्यों? क्योंकि हमारा तदात्म्य इतना गहरा है उसके साथ, अर्थात इस शरीर के साथ, ये इस शरीर का नाम है। इस शरीर से हम जैसे एक हो गए। प्लास्टिक सर्जरी हो जाए किसी के और दूसरे दिन उसको आईने में देखे तो क्या हो जाएगा? हलचल हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, एक्सेप्ट ही नहीं करता नया फेस व्यक्ति ऑपरेशन के बाद कि ये मैं हुई नहीं। या कमांडो सर्जरी हो जाती है, कमांडो सर्जरी तो जिनको यहाँ के कैंसर होते हैं ना, गुटखा वो सब खाते हैं तो यहाँ का पूरा ये जबड़ा निकाल के यहाँ जांग की चमड़ी यहाँ लगा देते, आड़ा टेढ़ा हो जाता है मुंह व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता है इसको। उसको स्वीकार करने के लिए टाइम लगता है। जैसे किसी का पैर काट दिया, यहाँ गैंग्रीन हो गया डायबिटीज की वजह से, फिर पैर काट दिया, दूसरे दिन उठता है, फैंटम लिम कहते हैं उसको, उसको कम से कम 21 दिन लगते ही ये स्वीकार करने को कि मेरा पैर नहीं है। वो मानता ही नहीं है कि मेरा पैर चला गया। हमेशा अभी लेटा हुआ है, उठेगा उठने के लिए, खड़े होने के लिए, पता चलता है अरे मेरा पैर ही नहीं है, क्योंकि ये नया आ गया है कुछ। तो हमारा भी ऐसा इतना गहरा तादाद में, इतना गहरा तादाद में, इतना गहरा तादाद में, कल कहा ना बाबा ने, क्योंकि एक तरह से इतने जन्मों के संस्कार है, वो पवित्रता के बीच में कहा है कि अंश आ जाता है। बाबा ने भी स्वीकार किया, यस ऐसा है, आता है, क्या करे, अपवित्रता खींचती है, खींचता है, क्या करे। तो भाव और भावना, और यहां हमने कहा मैं, तो मैं के साथ क्या जोड़ना है, आत्मा। ये कोई बाहर से बोलने की बात ही नहीं है कि मैं आया तो मैं ये जोड़ू वो जोड़ू, ये आंतरिक बात है पूरी। और मेरा आया तो ये उससे भी बड़ी तपस्या है ये मैं से भी बड़ी तपस्या है, मेरा वो है। अभी हमारे कौन है, ये मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ पिता बाप। जीसस क्राइस्ट ने कहा है, इफ़ यू वॉन्ट टू कम टू मी डिनाई योर ओन फादर एंड डिनाई योर ओन मदर। वो ये नहीं कहता है कि अपने उनको अस्वीकार करो, ये नहीं कि तुम ये मत कहो किसी को जाके तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मेरे बाप नहीं हो। वो कह रहा है तुम अकेले हो जाओ, डिनाई योर मदर एंड डिनाई योर फादर, तुम्हारा कोई नहीं है यहाँ पर। ही दैट लवेथ इज फादर एंड मदर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी, मेरे लायक ही नहीं है जो अपने लौकिक माँ बाप को मेरे से अधिक प्यार करता है, आउट। यहाँ आना ही नहीं मेरे पास मेरी शरण में आ जाओ, मामे कम शरण अमरो, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ, ऐसा चाहिए उसको। वो उसमें भी दिखाया, इसके पहले भी कई बार सुनाया, स्वामी विवेकानंद जब आश्रम में थे, उनके आश्रम में उनके जो गुरु भाई थे वो बार बार अपनी माँ को मिलने जाते रहता था। है सन्यासी, सारा संसार छोड़ दिया पर लौकिक घर वही है, तो बार 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 अपनी माँ को मिलने, लौकिक से अटैचमेंट, लौकिक से प्यार। चलो तब फोन नहीं था, नहीं तो फोन पे चलता था। वो कहते हैं आई डोंट वॉन्ट एम्बिग्यूअस टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज हु आर हाफ मंक्स एंड हाफ आउटसोल्डर्स आउट। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो संदिग्ध है, जो आधे सन्यासी हो आधे गृहस्थी है, आउट, भागो यहाँ से, जाओ जाके अपनी माँ की गोद में बैठ जाओ हमेशा के लिए, यहाँ नहीं हो। दिस इज द पाथ ऑफ सन्यास, ये सन्यास का मार्ग है। वो सन्यासी बनना इतना आसान नहीं है। बाबा तो कहते तुम सच्चे सच्चे सन्यासी हो, सब कुछ ही तुमने छोड़ दिया है, केवल स्थूल नहीं सूक्ष्म भी, बुद्धि से त्याग किया है तुमने चीजों का। कहाँ थे, मेरा बाबा, ये इतना आसान नहीं है, पर प्रभु प्रेम बहुत बड़ा, बहुत बड़ी साधना है। सब तो कहते हैं मेरा बाबा, नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, इधर बाबा उधर बाबा, झंडे लगा रहे हैं। झंडे लगाने से, कहने से बाबा का क्या संबंध, बाबा बहुत फिर भी वो खुश सबको करता है, सब पास है, ये है वो है, पर प्रभु प्रेम पर ऐसी ऐसी गहरी गहरी मुरली चली है कि जो जो कहते हैं हमारा बाबा से बहुत प्यार है, सब दो कदम पीछे हटेंगे वो मुरली पढ़ने के बाद। ऐसी डेप्थ वाली मुरलियाँ है, उसमें प्रभु प्रेम की कैसी कैसी परिभाषा दी है। ये 70s की मुरली, 80s की मुरली, जितनी प्रभु प्रेम की मुरलियाँ सारी निकालो और एक मुरली पढ़ के देखो, तीन प्रकार के बच्चे देखे, चार प्रकार के, ऐसा लगेगा मैं तो वो तीसरा भी नहीं हूँ इसमें से। और डायमंड हॉल में बाबा से प्यार किसका किसका है, एक हाथ दो हाथ तीन तीन हाथ, प्रेम पंथ ऐसो कठिन, बहुत कठिन पंथ है ये, जैसे कि कोई मोम का एक पुतला है वो आग पर चले, ये है प्रेम पंथ। मोम का पुतला किस पे चल रहा है? आग पर, ऐसा रहीम ने कहा है। तो ये मार्ग बड़ा तपस्या का मार्ग है, बड़ा त्याग का मार्ग है, सूक्ष्म तपस्या का मार्ग है, और दिन ब दिन हमारी तपस्या सूक्ष्म सूक्ष्म होती जाए, आंतरिक तपस्या धीरे धीरे सारे बंधन टूटते जाए, वो एक भाव कि यहाँ मेरा कोई है ही नहीं, किसी से कोई लेना देना, और जो मैं कुछ कर रहा हूँ वो अपने लिए, बाकी ये करूँ वो करूँ, ये नाम कमाऊँ वो नाम कमाऊँ, ये सब माया है। तो ये दो हो गए। आगे, किसी को ही नहीं देखना है, क्या संस्कार बनाना है? केवल अपने आप को देखो। सी फादर, डबल फादर, सी यूर सेल्फ, सी फादर, ये दो चीज हो गई। अपने आप को देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा नहीं बदलता उसको नहीं देखो, अगर देखना ही है तो क्या देखो फिर उसमें, उसकी अगर विशेषता देखो, वो जो कमी छोड़ने की कोशिश कर रहा है उसको धारण नहीं करो। अभी अभी किसी ने क्रोध किया, हमने देखा इसने इतना क्रोध किया, पर हो सकता है उसने आज ही बाबा के सामने सुबह संकल्प किया था कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, पर क्या करे बेचारा, क्या करे, हर एक पुरुषार्थ कर रहा है, हर एक में एक ऐसी सूक्ष्म कमी है कि जिस पर वो काम कर रहा है, और वो दूसरे को पता नहीं है, और वो अलग अलग तरीके से प्रकट होती है, जिस तरीके से प्रकट होती है उसको लोग गलत समझ लेते हैं। हो सकता है एक व्यक्ति इस पर काम कर रहा है कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी आज, पर उसका स्वभाव ही इतना ऐसा बन गया है कि निंदा किए बिना बेचैनी होती है, क्या करे, केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे स्मोकिंग करने से निकलते, निंदा सुख, तन बदन में खुशी होती है, क्या करे। और हमने देखा, अरे ये ऐसा करता है, बेचारा काम कर रहा है उसके ऊपर, उसको शक्ति दो ताकि वो अपनी कमी से मुक्त हो। तो क्या करना है, अपने आप को देखना है। अपने आप को देखने के लिए चाहिए मौन, एकांत, प्रकृति। अपने आप को देखने के लिए चाहिए फास्टिंग स्टेज। निराकारी दुनिया में जाना है ना, निराहारी दुनिया है वो, निराकारी दुनिया अर्थात निराहारी दुनिया, सूक्ष्म वतन अर्थात कौन सी दुनिया कहेंगे, सूक्ष्म वतन को फलाहारी नहीं, रसाहारी, शुभी रस, सब कुछ मिलता है वैसे। तो उस शरीर की अवस्था, मन की अवस्था जितनी जितनी सूक्ष्म होती जाएगी, जिसमें जितना उसमें से भारीपन हटता जाएगा, उतना ही आगे की सूक्ष्म स्थितियों का पता चलता है। नहीं तो छोटी अवस्थाओं में ज्ञान नहीं पता चलता, निचली अवस्थाओं में सूचनाएं हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान है, इधर उधर की बातें हैं, कहानियाँ हैं, ये सब छोटी अवस्था है। हायर अवस्थाओं में प्रज्ञा है, वो हम किसी से सुने हुए नहीं है, किसी ने कहा हुआ नहीं है, किसी ने बताया हुआ नहीं है, कहीं से पढ़े हुए नहीं है, वो अपने आप जागा हुआ है। अमृत वेले की अवस्था में, अचानक अमृत वेले उस सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति में वो ज्ञान जैसे प्रागट्य हुआ है, उस ज्ञान का, उस अंडरस्टैंडिंग का, जो हमने आज तक इतनी किताबें पढ़ी सब कुछ किया, कहीं नहीं था वो। श्री अरविंद का दिखाते हैं, वो क्या थे और क्या बन गए, क्यों सब कुछ छोड़ के पौंडीचेरी चले गए, वो तो क्रांतिकारी थे, और वो भी वो वाले क्रांतिकारी नहीं, वो तो गरम गरम दल था, वो नरम दल नहीं था, दो दल थे ना, एक तो क्रांति वाले और दूसरे अहिंसा वाले, वो दो थे, वो उसमें से थे, ऐसे ऐसे लेख लिखते थे फायरी कि आग लग जाती थी उधर, झगड़े हो जाते थे, इतने पावरफुल थे, और जेल में डाल दिए गए, वो भी किस लिए, वो बॉम्ब और वो सब चीज़ें जो हुई, उनका नाम उसमें आ गया ना, पर उस जेल में ऐसा परिवर्तन हो गया कि कुछ और ही हो गया, करने क्या गए थे, और जब निकले बाहर तो उनको इस क्रांति में इंटरेस्ट ही नहीं, परिवर्तन हो गया, आंतरिक परिवर्तन हो गया। कितने दिन विवेकानंद देखे उनको स्वप्न में, रोज 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 वही मूर्ति, जब निकले तो कहा कि मेरे जीवन का कार्य है ही नहीं, मेरा जीवन कार्य तो कुछ और है, चले गए उधर। अरविंद घोष, श्री अरविंद कहते हैं उनको। तो कहाँ थे हम, अपने को देखना है, दूसरों को नहीं, ये इसका संस्कार यहां बनाना है। अगला कल की मुरली, अचानक एवर रेडी और बहुत काल, अचानक एवर रेडी बहुत काल। कल क्या कहा बाबा ने मृत्यु के बारे में, भरोसा नहीं है, किसी का ही भरोसा नहीं है, किसी का ही भरोसा नहीं है। ये तो हम रोज ही देखते हैं पेशेंट्स के बारे में, अभी अभी ठीक, अभी अभी कुछ कुछ हो जाता है, अभी अभी ऐसा, अभी अभी वैसा, किसको क्या हो जाए पता ही नहीं चलता है। अभी अभी एक पेशेंट आया, उसको कहो ECG करके आओ, चेस्ट पेन हो रहा है, ECG करके आए, ECG किया, बाहर ही कोलैप्स हो गया, हार्ट का कुछ नहीं था, दूसरा ही, सीधा ICU। कभी भी किसी को भी कुछ भी हो जाता है, पता ही नहीं सकते। सुबह सब कुछ ठीक, एक मिनट के अंदर पेशेंट ब्रेथलेस, सीधा ICU शिफ्ट, वेंटिलेटर। इतना फास्ट सब कुछ होता है, एक एक मिनट में किसको किसको क्या हो जाता है, सब कुछ ठीक, सब कुछ ठीक, और अचानक कुछ हो जाता है। तो अचानक एवर रेडी और बहुत काल, लंबा समय का पुरुषार्थ चाहिए, छोटा मोटा नहीं, लंबा समय अर्थात कितना, कितने वर्ष मिनिमम। हाँ, ब्रह्मा को 33 वर्ष लगे संपूर्णता के लिए, हमें कितने वर्ष जो भी साधना कर रहे हो कम से कम 10 वर्ष 12 वर्ष तक चले। जैसे सत्य की साधना जो होती है 12 वर्ष की होती है, 12 वर्ष अगर कोई एक बार भी झूठ नहीं बोलता है तो कहते हैं उसे वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, फिर वो जो बोलेगा वो सत्य। साधना 12 वर्ष 14 वर्ष इस तरह की साधनाएं होती है, इतनी छोटी छोटी नहीं, लंबी साधना करनी है और उसमें टिक के रहना। तो ये इसका क्या करना है, अभ्यास अभी से, ब्रह्मचर्य साधना है, एक अलग ही साधना है, उसके प्रति डेडिकेटेड रहना होता है तो ही वो काम होता है, नहीं तो नहीं। ज्ञान योग कर रहे, सब कर रहे, सेवा में बिजी रह रहे, वो सब रहो, पर ये साधना अपने आप में अलग साधना है, एक इसके लिए अलग अटेंशन देना होगा। शरीर को स्वस्थ रखना एक अपने आप में अलग साधना है, तुम अध्यात्म में जो करना है करो, अगर प्रकृति के नियम तोड़े सब दंडित होंगे, ऊपर से नीचे तक, चाहे कोई भी हो, कोई भी। तीन प्रकार के नियम होते हैं, एक होता है सरकार के नियम, सरकार के नियम कहता है ये करो वो करो, ये नहीं करोगे तो दंड मिलता है, नहीं पालन करोगे तो, अगर पालन करते हो सरकार के नियम तो दंड नहीं मिलता है और ना ही कोई स्तुति भी होती है। रास्ते से इस तरफ से चल रहे कोई तारीफ करता है, मास्क पहन के घूमे तो कोई अवार्ड देता है क्या, नहीं देता है, पर तोड़ा तो दंड, अगर पालन किया तो कुछ नहीं। दूसरा है ईश्वरीय नियम, ईश्वरीय नियम का पालन किया तो प्राप्ति होती है, इधर भी और उधर भी, तोड़ा तो दंड इधर भी और उधर भी। तीसरा है प्रकृति के नियम, प्रकृति के नियम पालन करो तो तुमको अवार्ड मिलता है, यहीं के यहीं स्वस्थ रहेगा शरीर, और बिना स्वस्थ शरीर के पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता। पुरुषार्थ डिपेंड करता है शरीर कितना स्थिर है, शरीर रोग मुक्त हो, थकान मुक्त हो, बीमारी मुक्त हो, दर्द मुक्त हो, तापमान भूख प्यास की संवेदनाओं से थोड़ा ऊपर उठ गया है, ये खाऊं वो खाऊं ये सब चीज़ों से बहुत छोटा हो गया है, ये सब चीज़ें पीछे छूट गई है, जैसे हम उठ गए हैं ऊपर, ये सारी चीज़ें चाहिए। अगर प्रकृति के नियम तोड़े तो क्या होगा, दंड, दंड देगी प्रकृति, किस रूप में, शरीर बीमार। और ये आश्चर्य लगता है, लोग इतने बीमार पड़ते कभी रुक के सोचते क्यों नहीं है, डॉक्टर के पास जाते दवाई लेते ठीक होते चले, वापस वही गलती, और फिर दोष किसको देते हैं, ब्राह्मण होगा ज्ञानी होगा तो हिसाब किताब, बाहर के लोग होंगे तो वो खा लिया था ना, ये खा लिया था ना, या मौसम बदला ना इसलिए, अरे मौसम बदला है, इतने कमज़ोर है तुम्हारा शरीर कि थोड़ा सा मौसम बदलता है और तुम बीमार पड़ जाते हो, थोड़ा सा एक दिन गलत भोजन कर लिया तो तुरंत बीमार पड़ जाते हो, शरीर में इतनी पावर नहीं है, सेंसिटिविटी इतनी कम है। तो प्रकृति दंड देगी जरूर, और जब भी बीमार पड़ो सबसे पहले ये सोचो कि मेरे से क्या गलती हुई। राम राज्य में दिखाया, एक व्यक्ति आया अपने छोटे बच्चे को लेकर, ये राजा राम, ये बच्चा मर गया 12 साल की उम्र में, राम को लगा अकाले मृत्यु और राम राज्य में हो ही नहीं सकता, जरूर राज्य में किसी ने पाप किया है, ढूंढा कौन है जो राज्य में पाप कर रहा है, कहीं ना कहीं पाप हुआ है राज्य में, इसलिए तो राम राज्य में अकाले मृत्यु हो ही नहीं सकती, नहीं तो। फिर पता चला एक व्यक्ति है, वो गीता शास्त्र पढ़ रहा है, वो शूद्र है, और उसको फिर दंडित किया गया। ये राम के बारे में, श्री राम के बारे में जितनी पॉजिटिव बातें हैं ना, ये एक दूसरे प्रकार की बात है, जो उनका विरोध करने वाले ने ये बात बताते हैं कि राम ने भी ये भेदभाव किया है, उसको दंडित किया गया, क्योंकि उस समय का रूल ही वैसा था, शूद्रों को शास्त्र पढ़ने की आज्ञा नहीं थी। उसके कान में क्या कांच पिघला कर डाला गया, मतलब उसको दंडित किया गया। क्या नाम था सुबाहु, उसका नाम भूल गए हम। तो दंड तो मिलेगा, तो जब भी बीमार पड़ रहे हो सोचना मैंने किसी आज्ञा का उल्लंघन किया है प्रकृति के। तो सरकार की आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा, प्रकृति की आज्ञा, तीनों को लेके चलना है संगम युग पर। पहले दो करे और सरकार की ना करे, हम तो बीके है और ये है तो तख्ता और फोटो सरकार ये नहीं मानती तुम कुछ भी हो, तुम्हारी संस्था कोई, तुमको ये रूल का फॉलो करना है बस। फिर ये मत बताना अपना धर्म लिखो तो हम नहीं कहेंगे हम तो बीके, हम हिंदू धर्म ये सब नहीं मानते, ऐसा नहीं चलेगा। तुमको एडमिशन लेनी है इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, वो सब लिखना पड़ेगा नहीं तो समाज कंटक की श्रेणी में आ जाओगे। तो ये एवर रेडी, अचानक और लंबे समय का पुरुषार्थ। अगला आलस अल्पलपन में क्या, उसके बाद में गेगे और तोतो। ये भाषा, इन शब्दों को अपनी डिक्शनरी से हटा दो, कर लेंगे, हो जाएंगे, लास्ट में वैराग आ जाएगा, लास्ट में कुछ नहीं आएगा, अभी वैराग को जनरेट करो अभी तुरंत, इसी वक्त इसी समय। सब देखो संसार में क्या हो रहा है, कैसी हलचल हो रही है, एक भी व्यक्ति नहीं है जो दुखी या सुखी है पूरे संसार में, कोई है? एक पति नहीं है जो सुखी है, एक पत्नी नहीं है जो सुखी है, एक माँ नहीं है जो सुखी है, एक बाप नहीं है जो सुखी है, बेटों में भी कितनी हलचल है। आज करवा चौथ हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट है डेंगू के साथ, कल कह रहे थे डॉक्टर साहब मुझे छुट्टी चाहिए, हमने कहा क्यूटी को रुको थोड़ा, प्लेटलेट लो है, नहीं कल करवा चौथ है तो, तो हमारे दूसरे डॉक्टर, अरे पत्नी को बोलो यहाँ आ जाए हॉस्पिटल में, क्योंकि वो मुंह देख क्या चांद और फिर पति नहीं डॉक्टर साहब मुझे छुट्टी तो जाना है उसके बाद में अगला मास्टर सर्वशक्तिमान, इसको क्या कर दो अपना संस्कार यहां बना दो, शक्तिवान नहीं मास्टर सर्वशक्तिमान, सारी शक्तियां मेरे पास है, मैं हनुमान हूं, किसने बनाया नहीं है, मैं हूं ही शक्तिशाली, अतुलित बलधामा, राम काज करीबे को आतुर, कुछ भी राम का जो काम है वो करने को मैं तैयार हूँ, राम रसायन तुम्हारे पास है, राम का रसायन है पूरा, रस से भरा हूँ राम का, काम रस स्पर्श नहीं करता मुझे, निकट नहीं आवे है, जो भूत विकारों वाले ना वो मेरे सामने है, कि अगर मेरा नाम भी दे लो ना तुम तर जाओगे, इतनी पावर है, विराज सुबेशा। तो मैं कौन हूँ, मास्टर महावीर हूँ, महावीर, महावीर दो ही व्यक्तियों के लिए कहा गया है भारतीय संस्कृति में, एक हनुमान और दूसरा वर्धमान महावीर, और किसी के लिए महावीर शब्द का प्रयोग नहीं किया, और दोनों ही प्रतीक है ब्रह्मचर्य का, जिसने अपनी जीवन ऊर्जा को वीर्यवान जो है रोक रखा है वो महावीर। तो मास्टर सर्वशक्तिमान, अगला कौन सा संस्कार बनाना है, विघ्न विनाशक, कौन हो तुम, विघ्न विनाशक हो, ये नहीं कि विघ्न नहीं आएंगे, विघ्न आएंगे और तुम्हारे पास तो ज़्यादा ही आएंगे, जो जितना ज़्यादा महारथी उसके पास ऐसी ऐसी माया आएगी जो बाकी साधारण लोगों के पास नहीं आती है, साधारण लोगों के पास नहीं होती, जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना उसको ज़्यादा धोखे है, बाकी जो प्रजा है उसको तो वो कुछ भी करे ना तो 10 लोग तो तारीफ करेंगे पर 1000 लोग खड़े हैं जो उसका विरोध करने वाले, कुछ भी कहने दो उसको, तारीफ करने वाले एक तरफ तो निंदा करने वाले दूसरी तरफ, पर प्रधानमंत्री मोदी जी डिस्टर्ब हो जाते हैं क्या, अरे मेरे बारे में ऐसा कहते हैं, मैं तो कितना अच्छा हूँ, दुखी नहीं होते, उनको पता है ये सब होगा, खेल है, जितना हायर लेवल पे व्यक्ति पुरुषार्थ के पहुँचेगा उतनी माया ज़्यादा आएगी, जो जितना लो माया नहीं आ रही है किसी को मतलब समझना कोई कहते ना हमको तो कुछ नहीं, सब कुछ इतना अच्छे से चल रहा है, डिपार्टमेंट जाते हैं ड्यूटी करते बस, अरे पर तुम कर क्या रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, कुछ हलचल करो, बॉम्ब फेंको, कुछ तो करो तो फिर होगा, नहीं तो कुछ नहीं करो तो शांति से बैठे रहो, कुछ नहीं होता है। और बोलो कितने हो गए, 14 वो है प्राप्ति, अलग अलग नाम दिए बाबा ने, ये प्राप्तिया है, ये प्रभु प्रसाद है, अधिकार है, वर्षा है, ये समझो प्रसाद का कितना महत्व रखते हैं लोग। तो ये तुमको जो मिल रहा है ना, ये प्रभु प्रसाद है, ये प्राप्ति है, ये वर्षा है, ये अधिकार है। संगम युग पे जो कुछ मिल रहा है, या मधुबन में रहने का चांस मिल रहा है, सेवा करने का चांस मिल रहा है, ये प्रभु प्रसाद समझ के करो, इतना उसका महत्व हो। ऐसा नहीं सेवा इतने बजे, कितने भी बजे जाओ, कितने भी बजे, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है, डिपार्टमेंट के खुद मालिक बन गए, ये नहीं। हम अपना जो रूल्स है वो रूल है, उसको तोड़ना नहीं है। तो ये एक, और एक और क्या कहा, विश्व परिवर्तक, ये भी कहा एक जगह, और दृढ़ता चपड़ता की चाबी है, वो जो लास्ट में कहा ना बाबा ने, होमवर्क दिया है, होमवर्क 18 जनवरी की मुरली है दिसंबर की। तो क्या कहा, दो बातें, बदलना ही है, सहना करे, सामना करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। और जैसे कहा, जितना माया सूक्ष्म महारथी बड़ा, उतना उसको ज़्यादा सहन करना पड़ेगा, उसके पास ज़्यादा माया आएगी। और उसको जो कुछ नहीं कर रहे उनको कुछ नहीं होता है, शांति से, वो एक्चुअली तमो प्रधान अवस्था है, जिसमें व्यक्ति कुछ नहीं कर, शांति से बैठा है, कुछ नहीं करता है। एक व्यक्ति इतना आलसी था, कुछ नहीं करता था। स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है, वो उनके पास गए, उस व्यक्ति को कहा, क्या करते हो? बोले, कुछ नहीं करता बेटा। उसको कहा, चोरी कर सकते हो? एटलीस्ट चोरी तो करो, क्योंकि तमो से पहले रजो में आओ। फिर सतो की बहुत बात की बात है, फर्स्ट कम इन रजो, यू विल बी मोर नियरर टू गीता, यू विल बी मोर नियरर टू गॉड थ्रू फुटबॉल देन गीता। ये विवेकानंद का वाक्य है। एक स्कूल में बच्चे थे, ऐसे पतले दुबले, ना को उसमें दम ही नहीं था, उनको कहा कि तुमको भगवान के पास जाना है ना, गीता पढ़ना छोड़ दो, पहले फुटबॉल खेलो, पहले अपने शरीर को सशक्त, बॉडी बिल्डिंग वो बनाओ, तब कहीं जाके तुम वो कर सकोगे। तो पहले ऊपर तो उठो, थोड़ा कुछ तो करो। नेचर नेचुरल, भाग्य का खा रही है, भाग्य हिसाब किताब। बीमार पड़ने के बाद एक शब्द बिल्कुल नहीं कहना, चलती से भी ये मेरा हिसाब किताब था, हिसाब किताब नहीं, मेरी गलती थी। तुम बीमार पड़ते हो अपनी गलती के कारण, और अब उसको ठीक करो, बस वो है। या ब्राह्मणों के पास ऐसे शब्द आ गए मुरलियों से, ड्रामा, हिसाब किताब चलता है, बाबा ने कहा है, ये सब इसके वजह से डल हो गया है सब शब्दों ने। तो कौन सी चीज़ रहेगी, सारी हो गई, गे वो सब छोड़ दो, होमवर्क हो गया, प्राप्ति वर्षा, और लॉ एंड ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, जो बाप की ऑर्डर। लॉ क्या है, ऑर्डर, लॉ है, लॉ एंड ऑर्डर, ऑर्डर है, लॉ है बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं, ऑर्डर है बाप की ऑर्डर, बाकी और किसी की ऑर्डर नहीं मानो, माया की ऑर्डर नहीं मारो, मनमत परमत किसी का नहीं, भगवान ने कह दिया बस वही राइट है, बाकी सब खारिज। फिर वो एक चेक चेंज का भी बताया, बस ऐसी 14 बातें हैं, चेक करो चेंज करो। कई लोग केवल चेक करते हैं, हाँ हमें ये कमी है, हाँ मैंने गलत, मैं बीमार पड़ गया, चेक किया, अरे पर अभी चेंज भी तो करो, फिर अगली बार से नहीं पढ़ो, अभी ये खाया था ना, अभी ये मत खाना फिर से दोबारा, नहीं तो फिर बीमार पड़ोगे, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। चेक चेंज, तो कितनी दो 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 बहुत सारी बातें थी मुरली में। तो इस मुरली को आज फिर से पढ़ना, फिर से रिवाइज करना, और क्या करना, दोहराओ, विजुलाइजेशन, देखना, पढ़ना, रिपीट करते रहना, और नए संस्कार क्रिएट करना है ज्ञान के, उस नई दुनिया में हमको चलना है। ओम शांति। Yeah.